देवियों सज्जनों, आर्य उद्देश्य रत्नमाला स्वामी दयानंद जी के पुस्तक में से आज की चर्चा का विषय है वर्ण और आश्रम। स्वामी जी की भाषा में आई बिलीव इन द वर्ण आज द फोर क्लासेस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड आश्रम आज फोर स्टेजेस ऑफ मैन्स लाइफ इन द बेसिस ऑफ सर्टन क्वालिफिकेशंस and to perform certain action. So the Varna class and Ashrama order of an individual should be determined by his and her merits. हमारे कल्चर में, संस्कृति में जो बहुत सारी सिस्टम है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट सिस्टमिक सिस्टम जो सोशियल ऑर्डर है, एक है वर्ण व्यवस्था और दूसरी है आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था सोसाइटी को डिवाइड किया गया था चार क्लास में बेस्ड ऑन देयर मेरिट, देयर वेकेशन, देयर नेचर, देयर एटीट्यूड। आश्रम व्यवस्था ह्यूमन लाइफ को, हमारे इंडिविजुअल लाइफ को चार स्टेज में बांटा गया था, डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। जैसे कि जब बच्चा पैदा होने के बाद 15, 20, 25 साल तक, आज भी जो लाइफ पे हम डेडिकेट करते हैं अपने आप को योग्य बनाने के लिए, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वी आर जस्ट लर्निंग। अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे यश और स्वरा कितना सुंदर भजन गा रहे थे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भजन गाते हैं, फिर इनसे आप कुछ भी करा वो बढ़िया करते हैं, क्योंकि सीखते हैं। ये एज है 20, 22, 25 साल तक आप सीख। अगर आप एक स्टेज के काम को नहीं करते फिर अगले स्टेज में आपके दुगुना काम बढ़ जाता है। अगर आप प्रॉपर अटेंशन देते हर काम को स्टेज के लिए, अब जैसे ह्यूमन लाइफ का फर्स्ट जो क्वार्टर है वो सीखने के लिए, आप कुछ भी सीखें, पढ़ाई सीखें, प्रोफेशनल एजुकेशन सीखें, कुछ भी सीखें। दूसरा हाफ है कि जो सूखा उसको इम्प्लीमेंट करें और उसके द्वारा कमाएं, धन कमाएं, नाम कमाएं, यश कमाएं, इवन आप अपने सेंसेस को प्लीज भी करें, अपने शरीर को संतुष्ट भी करें। और तीसरा, जब आप संसार को भोगने में संतुष्ट हो जाएं, आपके बच्चे खुद बच्चे वाले बन जाएं, तो फिर आप, आपकी शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगे, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है, तो फिर आपकी सेंसुअल जो एंजॉयमेंट है उसको रेगुलेट करें, आपकी जो फैमिली के सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे दूर हटें, जो अटैचमेंट था उसको काम करने की कोशिश करें। वो थर्ड स्टेज है, उसे हम वानप्रस्थ कहते हैं। और चौथा, जब पूरी तरह आपको लगे कि आपको दुनिया के हर चीज से आप डिटैच हो चुके हैं मेंटली, तो फिर आप पूरी तरह अपने आप को डिवोट करें खुद के लिए। वो ऐसा आश्रम होता है जहाँ पूरी तरह सेल्फिश होते हैं, स्मार्ट सेल्फिश होते हैं। आप अपने लिए देते हैं, अपने लिए मतलब इस बॉडी के लिए नहीं। जनरली जिसको हम सेल्फिश कहते हैं वो बड़े स्टूपिड होते हैं, उनकी सेल्फिशनेस अपनी फिजिक को संतुष्ट करने में लगा रहता है, अपनी बॉडी को। एक स्मार्ट सेल्फिश है जो खुद को जानने के लिए, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया। आप कहेंगे जानने का मतलब क्या है, जिस दिन आप इसको जान जाएंगे तो आपको एक अचीवमेंट होगी, विल बी फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ अटैचमेंट, ऑल टाइप ऑफ संस्कार। फिर आप उस मुक्ति के लिए परमेश्वर को पाने के योग्य बन जाते हैं, नेचुरली बन जाते हैं, विदाउट डूइंग एनी एफर्ट। जिस दिन आप खुद को जान जाएंगे उस दिन आप परमात्मा को पा लेंगे। तो ये चार स्टेजेस था कि व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के सुख को पाए, और चार क्लासेस थे जिसकी चर्चा हम करेंगे। जो क्लास है उसे हम वर्ण कहते हैं। जो सिस्टम आज चलता है, कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था, जाति का मतलब जन्म, सिंपल मीनिंग साफ है कि आपकी एक कास्ट है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ आपकी कोई मेरिट है, डिमेरिट है, आपकी कोई क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि बाई चांस आप किसी के घर में पैदा हुए हैं। देखिए, पैदा होना आपकी मर्जी से नहीं है, आप बाई चांस हैं, और उस बाई चांस को आप सच मानते हैं, कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं गुप्ता हूँ, मैं दास हूँ, मैं वगैरह, जो कि 100% इमेजिनरी है, जिसका कोई रीजनिंग नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई बेस नहीं, ना कोई स्क्रिप्चरल कोई रेफरेंस है। और वो उस वर्ण व्यवस्था का, क्लास डिवीजन का डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। तो वर्ण क्या था? इस वॉज एक्चुअली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेचुरल फोर फोल्ड डिवीजन दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी, ए डिवीजन बेस्ड ऑन गुण, क्वालिटी, कर्म, वोकेशन एंड स्वभाव, टेम्पर। देवियों सज्जनों ध्यान दीजिएगा, वर्ण व्यवस्था जो हमारे शास्त्र आपको रिकमेंड करते हैं, दुनिया का कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी देश हो, हर देश में, हर सोसाइटी में ये नेचुरली ये आपको देखने को मिलेगा। चार तरह के लोग आपको मिलेंगे बेस्ड ऑन देयर गुण, कर्म, स्वभाव। गीता में कृष्ण लिखते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। साफ है, चार वर्ण बनाए गए हैं गुण के बेसिस पर, कर्म के आधार पर और स्वभाव के आधार पर। ये नेचुरल है, जो भी ईश्वरीय है वो अफ्रीका में भी मिलेगा, वो यूरोप में भी मिलेगा, वो जापान में भी मिलेगा, वो इंडिया में भी मिलेगा, वो अमेरिका में भी मिलेगा। जो अननेचुरल है वो एक खास जात में मिलेगा, खास सोसाइटी में मिलेगा। आपकी जाति व्यवस्था आपकी बनाई हुई है तो सिर्फ आपकी सोसाइटी में मिलेगी, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। स्लेव सिस्टम, जिसको वो भी बहुत बड़ा नेचुरल मानते थे, गॉड गिफ्टेड मानते थे, आज वो समझदार हुए, उन्होंने छोड़ दिया। जब तक रखते थे तब तक मानते थे कि ये ईश्वर ने हमें वरदान दिया है कि हम इनको स्लेव बनाएंगे। तो पढ़े लिखे होते गए मेंटली, मैं प्रोफेशनली पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं करता, इंडियन लोगों में अभी मेंटली इतना वो एजुकेटेड नहीं हुए हैं। इवन प्रोफेशनली हायर एजुकेटेड लोग भी मेंटली इंटेलेक्चुअली इतने हायर नहीं है, तो अभी वो उस गंदी सिस्टम को बनाए रखते हैं। तो जिस सिस्टम को हमारे स्क्रिप्चर शास्त्र रिकमेंड करते हैं वो नेचुरल क्यों है? दुनिया में कोई भी सोसाइटी देखिए, चार तरह के लोग आपको मिलेंगे। कोई इंटेलेक्चुअली बहुत पावरफुल है, जिसका जो टेंडेंसी है, टेम्परामेंट है, ऑलवेज अर्निंग मोर एंड मोर नॉलेज, पढ़ना, सीखना, रिसर्च करना, लोगों को गाइड करना, पढ़ाना, सिखाना, हर सोसाइटी में है। आजकल आप इसको इंटेलेक्चुअल सोसाइटी वर्ग कहते हो। ऐसा कोई सोसाइटी नहीं है जिसमें इंटेलेक्चुअल क्लास नहीं होता है। ये ब्राह्मण इसको हमारे शास्त्र कहते थे। अगला वर्ग है जिनका इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पावर को अर्न करने में है, होल्ड करने में है, वो पॉलिटिकल पावर हो, वो फिजिकल पावर हो, शक्ति चाहिए उनको, ये उनके टेम्परामेंट में, उनके नेचर में है। फिर जिस तरह का काम वो करते हैं, प्रोटेक्शन वाले काम में करते हैं, लोग मिसयूज तो हर जगह करते हैं, जिसको आज आप पुलिस में देखते हैं, आर्मी में देखते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स में देखते हैं, जिन्हें हमारे शास्त्र क्षत्रिय कहते हैं, जिनका काम है प्रोटेक्ट करना, जिनका नेचर है ताकत लेना। ब्राह्मण उसको कहते थे जिसका काम है दूसरों को सिखाना, खुद सीखना, जिनका नेचर है ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लेना। तीसरे टाइप के लोग होते हैं जिनका नेचर है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, वेल्थ, पैसे को होल्ड करना, कमाना, धन संपत्ति। और जिनका प्रोफेशन है पैसा कमाने के, जितने भी साधन है, वो बिजनेस हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी फील्ड हो, जहां पैसा ज्यादा से ज्यादा आ सके, उसको हमारे शास्त्र वैश्य कहते हैं। ये नेचुरल टेंडेंसी है हर ह्यूमन बींग में। अब ये नहीं कहेंगे कि अफ्रीका में ये चार क्लास नहीं मिलते, अमेरिका में ये नहीं मिलते, जापान में नहीं मिलते, इंडिया में नहीं मिलते, अरब में नहीं मिलते, ऐसा नहीं हो सकता। और चौथा है जो आर्टिसन या सर्विस क्लास है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ज्ञान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ताकत कमाने में, पावर होल्ड करने में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एबिलिटी नहीं है, पैसा कमाने में भी ना एबिलिटी है ना कोई इंटरेस्ट है, पर जिंदा रहने के लिए, जिंदा रह जाए खुश है, लेबर क्लास है, सर्विस क्लास है, आप उनको फोर्स भी करो तो भी नहीं होगा, वो उनकी टेम्परामेंट है, उसे हमारे शास्त्रों ने शूद्र कहा। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि आपकी शास्त्र रिकमेंड करते हैं, वो दुनिया में आज भी किसी भी कोने में आपको देखने को मिलेगा। उसकी क्लासिफिकेशन किसी ने किया हो ना किया हो, हमारे ऋषि मुनि शास्त्रकार हजार हजार साल से उस सोसाइटी को इस तरह क्लासिफाई करके देखने की आदत डाली, और उनकी ऐसे इतना नहीं है, उनकी क्या गुण, कर्म, स्वभाव, कैसे आपको पता चलेगा कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, उसकी डेफिनेशन बता दिया। आप दूसरों को समझने के लिए या खुद को समझने के लिए, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिया। ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त है, तो उसमें चार वर्णों का फर्स्ट टाइम हमारे शास्त्रों में पहला रेफरेंस मिलता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः गुरु तदस्य यत्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो जायत। जो कॉस्मिक बीइंग है, जो विश्व पुरुष है, जो समाज रूपक पुरुष है, हमारे शास्त्र ज्यादातर मेटाफोरिकली बात करते थे, इस समाज रूपक पुरुष के चार अंग हैं। उसका जो मुंह का को कंपेयर करें तो इंसान में जो ब्राह्मण कैटेगरी के लोग होते हैं वो उसके मुंह की तरह है। मुंह का क्या काम है? बोलना, ज्ञान लेना। आप जो नॉलेज लेते हैं तो भी इस बॉडी के इसी पार्ट से ही लेते हैं, आपके कान से, आंख से, मुंह से लेते हैं, और जो ज्ञान आप देते हैं वो भी मुंह से ही देते हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। तो आजकल ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, आप कंप्यूटर से, इंटरनेट से, आप हाथ से भी दे सकते हैं ज्ञान। इसीलिए ब्राह्मण मुख के बराबर तो समाज का, क्षत्रियो बाहु भुजाओं का क्या काम है? ताकत का जो पहचान है, पावर का जो पहचान है, वो भुजाओं से होता है। प्रोटेक्शन भी अब हाथों से ही भुजाओं से करते हैं। तो शक्ति लेना और शक्ति को यूज करना, ये दोनों भुजाएं उसके प्रतीक हैं। तो क्षत्रिय समाज का बहुस्थान है उरु तदस्य यद वैश्य, जो मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, पेट से लेकर कंधा तक, जो आपकी बॉडी को सस्टेन करने में हेल्प करता है, जो आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, पूरे शरीर को जो एनर्जी देता है, ब्लड सर्कुलेट भेजता है, वो आपके मिडिल पार्ट है। जैसे इस बॉडी के मिडिल पार्ट का काम है पूरे शरीर को बैलेंस बनाना, सस्टेन करने में हेल्प करना, पूरे शरीर को एनर्जी, ब्लड, जो कुछ भी चाहिए उसको भेजना, इसी तरह समाज में जिस कम्युनिटी का, जिस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन इसी रूप में हो, धन कमाना, धन में आपके अनाज भी आता है, घर भी आता है, सब कुछ आता है, उसको कमाना और सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करना। कल्पना कीजिए, आपके अगल बगल में स्टोर्स ना हो, दुकानें ना हो, आपके पास बहुत पैसे हो, क्या करेंगे? एप्पल खरीदने के लिए कैलिफोर्निया जाएंगे, गेहूं खरीदने के लिए मिशिगन जाएंगे, आम खरीदने के लिए मेक्सिको जाएंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? जो करता है उसको वैश्य कहते हैं। वो क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। फिर आपको क्या हेल्प करता है? आप तक वो सामान को डिस्ट्रीब्यूट करके पहुंचाता है, ये वैश्य का काम है। अशूद्र क्या करता है? बोले पाद स्थान है, आपके पैरों के, आपके शरीर में क्या स्थान है, वो आपको ढोता है, आपकी बॉडी को ढोता है, आपके बोझ को ढोता है। जो लेबर क्लास है वो क्या करता है? जो हेवी वर्क है वो करता है, जो आपसे नहीं होता, जो फिजिकली वर्क, जहां आपको माइंड की यूज करने की कम जरूरत है, इंटेलेक्ट यूज करने की कम जरूरत है, आपकी पावर यूज करने की कम जरूरत है, वो आपके बॉडी, आपके पैर कर। जैसे पैरों का शरीर के स्थान है, उसी तरह शूद्र। इसका अर्थ नहीं कि पैर छोटा होता है, मुंह बड़ा होता है। जिसका पैर नहीं उसको पूछो पैर का क्या कीमत है। जिसके हाथ नहीं उसे पूछो हाथ की क्या कीमत है। अरे की अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपनी अपनी आवश्यकता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हर समाज में आपकी भी एक समाज है, आर्य समाज है। कुछ लोग किचन संभालते हैं, कुछ लोग मॉन्टेसरी संस्कृति स्कूल में पढ़ाते हैं, कुछ लोग मेंटेनेंस करते हैं, कुछ लोग देखिए ऑडियो वीडियो सिस्टम संभालते हैं। हर आदमी अपने अपने काम करता है। जब करता है हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कहीं आपको जाए, आपको कुछ अनहोनी ना लगे, कुछ उठपटांग ना लगे, सब कुछ नॉर्मल लगे, तो समझ लीजिए कि उसके पीछे सैकड़ों लोग काम करते हैं। जब सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, ये रैंडमली नहीं होता है कि अचानक नहीं होता, इसका मतलब है कि उसके पीछे काफी सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आपको कुछ अलग दिखे तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ी है, किसी ने कुछ कमी की या ज्यादा कर। इसका अर्थ नहीं कि किचन वाले खाना देते हैं तो ज्यादा महान हो गए, या संस्कृति स्कूल वाले पढ़ाते हैं तो ज्यादा महान हो गए। नहीं, हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, और क्योंकि सब अपने अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए आपकी समाज अच्छा चलता है। किसको छोटा कहोगे, किसको बड़ा कहोगे? जो कहे वो सबसे ज्यादा मूर्ख लीडर होगा, वो अपने शरीर का एक अंग काट के फेंकने को तैयार है। इसलिए सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, आप किसी को अलग नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण दोज ऑफ लर्निंग विजडम एंड ऑस्टेरिटी हु हैड डिवोटेड देयर लाइव्स टू द एक्विजिशन एंड डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज, दे आर कॉल्ड ब्राह्मण। मैं बताते जाऊंगा, आप अपने आप को पहले देखते जाइए, दूसरों के बारे में बाद में पता लगाइएगा कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, आप माँ बाप किस जात के थे वो भूल जाइए, आप क्या है पहले वो पता लगाइए। अगर इसके ये सब क्वालिटी आपके अंदर दिखता है, समझ लीजिए आप ब्राह्मण है। समो दमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये गीता का है, ये कोई मेरा श्लोक नहीं है कि आप कहेंगे या आप बोलते हैं, ये आपके ग्रंथों के श्लोक है, आपको कोट करते हैं। तो गीता कहते हैं कि ब्राह्मण का लक्षण क्या है, उसकी नेचर क्या है, कहते हैं जिसके अंदर सेरेनिटी हो, सेल्फ रिस्ट्रेंट हो, दमा हो, तप ऑस्टेरिटी हो, कष्ट सहने को तैयार रहता हो, प्योरिटी हो, मेंटली फिजिकली प्योर हो, क्षमा शांति जिसके अंदर फॉरगिवनेस क्षमा करने की सामर्थ्य हमेशा रहता हो। देखते जाइएगा अपने अपने जात को वर्ण को देखते जाइएगा। एंड ऑल्सो अप्राइटनेस जिसके अंदर कोमलता हो, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की हिम्मत हो, किसी को डरे नहीं, जो है वो बोलने की क्षमता रखता हो, नॉलेज ज्ञान को अक्वायर करने में, लेने में और देने में हमेशा उसको मजा आता हो, सीखने में और सिखाने में, नई नई चीजें जानने में और लोगों को बताने में, खाली जानने में नहीं बताना भी जरूरी है, और ईश्वर को जो मानता हो और समझता हो, आस्तिक्य जिसके अंदर आस्तिकता का भाव हो, पॉजिटिविटी हो, ब्रह्म कर्म, ये सब ब्राह्मण का स्वभाव होता है, नेचर होता है। मतलब जिस जिसके अंदर ये नेचर है वो ब्राह्मण होगा। तो उसकी प्रोफेशन क्या है, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। जो पढ़ाता हो खुद भी पढ़ता हो, मतलब सीखता हो सिखाता हो, ज्ञान लेता हो देता हो, यज्ञ कराता हो करता हो। यज्ञ करना कराने का मतलब है रिलीजियस एक्टिविटी में, क्योंकि आजकल हिंदुओं में यज्ञ तो अब रहा नहीं है, पूजा पाठ हो गया सब। प्राचीन काल में ये मूर्ति पूजा वगैरह का कंसेप्ट नहीं था, इसीलिए ना गीता में ना मनुस्मृति में ना वेद में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ब्राह्मण हो जो मंदिर में पूजा करता हो। ये तो नई बीमारी है, ये नई सोच है। यज्ञ करना ये रिचुअलिस्टिक पार्ट था हिंदुओं का, जो करता हो कराता हो, दान देता हो। आजकल तो ब्राह्मण उसी को कहते हैं जो लेता है, पर शास्त्र कहता है ब्राह्मण वो है जो दान देता है और प्रतिग्रह लेता भी है, देता है लेता है। आजकल तो सब वन साइड है, इसलिए मत सोचिए कि आप शर्माओ तो ब्राह्मण हो। देख लीजिए इनमें से कुछ आपके अंदर जग जाता है तो आप शर्मा नहीं भी है तो भी ब्राह्मण है, अगर है, अगर ये सब नहीं है भूल जाइए कि आप ब्राह्मण है, लोगों को आप कुछ कुछ भी बोलते रहिए। चैव ब्रह्म कर्म ब्राह्मणानाम कल्प, ये ब्राह्मणों के प्रोफेशन। क्षत्रिय कौन है, जस्ट आज द आर्म्स आर राइज्ड टू डिफेंड द पार्टी, द क्षत्रिय मेन ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सोसाइटी। बिल्कुल वैसे ही जबकि आपके शरीर को मच्छर काटे या कोई दुश्मन अटैक करे, सबसे पहले आपका पैर उठता है, आंख उठता है, नाक उठता है कि हाथ उठता है, कौन सा अंग उठता है, नेचुरली हाथ ही उठते है ना। तो समाज में आप देखेंगे रोड में आप जा रहे हैं, कहीं कोई लड़ाई होती है, कोई बुरा काम होता है, सैकड़ों लोग चले जाएंगे, बहुत कम लोग होंगे जो प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। तो बाय नेचर जो प्रोटेक्ट करने के लिए आता है उसका मतलब है कि उसके अंदर वो क्षत्रिय गुण है, बाकियों में नहीं है। वो कोई ब्राह्मण हो सकता है, वैश्य हो सकता है, शूद्र हो सकता है, ये बाय नेचर उसके अंदर है। बिल्कुल हाथ की तरह आपके बॉडी में कहीं भी चोट लगे, कुछ भी हो, सबसे पहले अगर कोई रिएक्ट करता है वो आपके हाथ रिएक्ट करता है। तो दे आर मैन ऑफ आर्म्स हु एक्सेल्ड इन वैलोर एंड सिविलिटी, devoted their lives to the protection of the society by acting as bulwarks against external aggression and maintaining internal law and order were known as kshatriya, जिसको आजकल आप लीडर्स कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या लीडर्स कहते हैं, या आर्मी मैन कहते हैं, या पुलिस में है या पैरामिलिट्री में है, कोई भी व्यक्ति जो पावर जिसके पास है, जो पावर में मजा लेता है और पावर को यूज करता है प्रोफेशनली टू प्रोटेक्ट। देखिए गीता क्या कहता है, आप अपने में से ढूंढ लीजिए कितने क्षत्रिय हैं, अपने आप को परख लीजिए कि आप क्षत्रिय है कि नहीं है। पहले नेचर को समझ लीजिए, अगर आपके अंदर ये गुण है, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावच्च कात्रम कर्म स्वभावजम, शौर्य हो, प्रवेश हो और तेज हो, आपके शरीर में वो स्प्लेंडर हो, फार्मनेस हो, डिसीजन लेने में आप बड़े स्ट्रांग हो और कोई भी काम आप करें उसमें आपकी स्किल हो, स्किलफुल हो आप, एंड ऑल्सो नॉट अ फ्लीइंग फ्रॉम बैटल, कहीं लड़ाई होता हो तो पीट करके ना भाग जाता हो, अगर खड़ा रहे इसी के बीच में हो, एक बड़ा कोई भी किसी पर जुल्म करता हो या फाइट होता हो, अगर वो स्टैंड करता हो, भाग नहीं जाता हो, देख लीजिए कि अपने में से कितने क्षत्रिय हैं, तो समझ लेना वो क्षत्रिय है। दानम ईश्वर भावच्च, देने में प्रवृत्ति हो, लेने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो, कमाकर जो ले मांग कर नहीं, और ईश्वर भाव, डोमिनेटिंग नेचर हो, राज करने की इच्छा हो, दूसरों पर राज करने की इच्छा हो, तो समझ लीजिए कि वो क्षत्रिय गुण से युक्त है। उसका प्रोफेशन क्या होता है, प्रजानाम रक्षणम, ये मनुस्मृति का, दानमिद्याध्ययनमेव च विषयस्व प्रदास्तिस्तु च क्षत्रियस्य समासतः। क्षत्रिय जो दूसरों को प्रोटेक्ट करता है, जो दूसरों को देता है, मजा आता है, जो यज्ञ करता है, कराता नहीं है, जो दान देता है लेता नहीं है, पर दूसरों को प्रोटेक्ट करता है, पढ़ाई करता है पढ़ाता नहीं है, ऑब्स्टेन फ्रॉम अटैचिंग हिमसेल्फ टू सेंसुअल प्लेजर, वो तो सभी के साथ है, जो भी अच्छे लोग हैं वो सबके लिए आता है, जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है वो सब, ये सब क्षत्रियों का काम है। वैश्य किसको कहेंगे, कैसे आप समझेंगे कि आप वैश्य है या नहीं है, या कैसे समझेंगे कि आप जिसके बारे में समझते हैं वो वैश्य है कि नहीं है, तो वैश्य मेन ड्यूटी इज मेटेरियल नॉरिशमेंट, दोज एंगेज्ड इन ट्रेड कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स वेर नेम्ड वैश्य। हो सकते हैं आप शर्मा हो, अगर आपने स्टोर खोल रखा है तो आप वैश्य है, ये मानिए। हो सकता है आपका नाम गुप्ता हो, अगर आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, ईश्वर में भक्ति हैं, सरल हैं, तो आप ब्राह्मण है, मानिए। शास्त्र क्या कहता है वैश्यों के बारे में, गीता में कहा, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। बाय नेचर वो व्यक्ति को पैसा कमाने के जितने भी साधन है वो सब में इंटरेस्ट हो, यहाँ दो तीन साधन है, क्योंकि ये बात 10,000, 5,000, 8,000 साल पहले की है बात है, आजकल की तरह इतने सारे स्कोप नहीं है पैसा कमाने के तरीके, तो वो उस जमाने का बताया। उस जमाने में 3-4 तरीके होते थे, या तो खेती के द्वारा, या गाय बकरी पाल के, या बिजनेस करके, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, गो रक्षा कैटल रेयरिंग में आपके गाय बकरी भेड़ जो भी, और वाणिज्य मतलब जब आप ट्रेड बिजनेस करते। आज ट्रेड के अलग अलग तरह के हैं, इवन आप आईटी भी फील्ड में है तो भी आप बिजनेस करते हैं। मनुस्मृति इसको अपने ढंग से कहता है, पशु नाम रक्षणम दानम इत्याध्याप अध्ययनमेव च वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च। मनुस्मृति में मनु ने कहा कि वैश्य क्या करते हैं, उनका नेचर क्या है, प्रोफेशन क्या है। बिकॉज वी असाइन टू टेंड कैटल टू बेस्ट टू गिफ्ट, मतलब जो देने में इंटरेस्ट रखता है, लेने में नहीं। पशु पक्षी का पालन करता है, यज्ञ करता है, कराता नहीं है, पढ़ता है, पढ़ाता नहीं है, ट्रेड करता है, बिजनेस करता है किसी भी तरह का, और कुसीद इंटरेस्ट जो जो टू लेंड मनी लोगों को। पहले जमाने में, आजकल तो बैंक से आप लोन लेते हैं, पहले साहूकार लोग देते थे, देना उसके बदले में ब्याज लेते थे। हमारे यहाँ इसको बुरा नहीं माना जाता था, इसे पार्ट ऑफ ह्यूमन, ये लोगों को हेल्प किया जाता है और उससे पैसा कमाते हैं। ये सब वैश्यों का काम। जो व्यक्ति ये करता है, इसी नेचर का है, वो वैश्य है। शूद्र कौन है? वो अर्न देयर लाइवलीहुड बाय फिजिकल लेबर एंड सर्विस टू द अदर थ्री ग्रुप्स केम टू बी नोन एज शूद्र। तो जिसके पास बिजनेस करने की क्षमता नहीं, एबिलिटी नहीं, जिस जो इंटेलेक्चुअली इतना हाई नहीं, ये कोई प्रोफेसर बन सके, कोई इंटेलेक्चुअल बन सके, कोई जर्नलिस्ट बन सके, कोई एडवाइजर बन सके, वगैरह वगैरह, या जिसमें इतनी पावर नहीं कि वो कोई आर्मी में जाए, पुलिस में जाए, या पॉलिटिकल लीडर बने, तो वो फिर क्या करते हैं? लेबर क्लास है। इट इज द सर्विस एंड आर्टिसन क्लास एंड कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशन। आज की तारीख में आप कंपेयर करें कंटेम्पररी, जितने भी सर्विस क्लास है वो सब शूद्र कैटेगरी में आते हैं। इवन कोई इंजीनियर हो, एग्रीकल्चर हो, माइनिंग हो, मेटल हो, कोई भी हो, क्योंकि अगर आप किसी की नौकरी करते हैं तो आप शूद्र कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करते या रिसर्च करते या वो चीजें सिखाते हैं तो आप ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। द्रोण ब्राह्मण था, वो भी लड़ाई करता था, क्योंकि वो युद्ध विद्या को सिखाता था। किसी राज करने के लिए उसके अंदर डोमिनेटिंग नेचर नहीं था, राज करने की उसके अंदर कोई नेचर ही नहीं था, पर वो बड़े से बड़े क्षत्रियों से ज्यादा विद्या जानता था, पर उसका नेचर ब्राह्मण जैसा था। ब्राह्मण का नेचर क्या है? कुछ मिल जाए लेकर खाएगा, वो प्रोफेशनली कमा के नहीं खाता है, वो सिखाएगा, फ्री में सिखा देगा, जो दक्षिणा ने दे दिया वो उससे पेट भरता है। उसको कोई किसी पर हुकुम चलाने का, ऑर्डर चलाने का कोई शौक नहीं था, वो द्रोण ब्राह्मण था। पर उसके जो शिष्य थे वो कौरव हो, पांडव हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, वो क्षत्रिय थे, क्योंकि उन्होंने जो सीखा था वो उनका नेचर था। वो सीख करके राजा बनते थे या कोई ऐसी एक्टिविटीज में थे जो सोसाइटी को जो कंट्रोल करते, जो रूल करते। ज्ञान तो द्रोण को ज्यादा था बड़े से बड़े क्षत्रिय वीरों से, पर द्रोण ब्राह्मण था। ज्ञान होने मात्र से कोई क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता है। उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रोफेशनल एक्टिविटी क्या है, उससे काउंट होता था। इसीलिए कहा परिचर्यात्मकम कर्म, सिंपल डेफिनेशन दिया, कोई भी काम हम करें अगर वो परिचर्या वाला है, अगर वो सर्विस वाला है, तो वो शूद्र है। मत सोचिए कि जो आपके घर में घास काटने आता है, जो लैंडस्केपर है, वो सिर्फ शूद्र है। आप भी जाकर किसी कंपनी में बड़े पोस्ट में नौकरी ही करते ही है ना, इसी से तनख्वाह ही लेते हैं ना, तो वो शूद्र कैटेगरी का ही होता है। An individual with merit can move from one to another varna. Varna vyavastha, jiski charcha humne ki, class system, aur jo aaj hamare society mein hai, jisko hum kehte hain caste system, jati va pratha. Jati matlab by birth. Main brahman hoon, jabki main बकरी काटता हूँ, मांस खाता हूँ, मैं किसी के यहाँ चाय बेचता हूँ तो तब भी मैं ब्राह्मण हूँ क्योंकि मेरे सरनेम शर्मा है, मिश्रा है, उपाध्याय है, वगैरह वगैरह। ये जो जातिवाद इसको कहते हैं, कास्ट सिस्टम। मेरे अंदर एबिलिटी है नहीं है, मेरा नेचर ऐसा है नहीं है, पर मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ या मैं वैश्य हूँ या शूद्र हूँ। क्लास क्या है? मेरा जैसा नेचर है मैं उसी हिसाब से बनूंगा। मेरे माँ बाप क्या थे वो अलग बात है, और आपकी पूरी शास्त्र, आपकी पूरा इतिहास भरा पड़ा है। ये जो इंटरचेंजिंग कास्ट था कि मेरे माँ बाप, ऋग्वेद में मंत्र आता है कि पिता वैद्य है, वैद्य मतलब डॉक्टर है, इलाज करते हैं। एक भाई बिजनेस करता है, एक भाई गाय पालता है, तो अलग अलग एक ही परिवार में बाप एक जाति वर्ण का है, बड़ा भाई एक क्लास का जाति का है, छोटे भाई एक जाति का है, माँ एक जात का है। एक ही परिवार में चारों अलग अलग क्लास के होते थे, आज ऐसा नहीं है। हम हजारों पीढ़ी से एक ही जात के बने हैं, जबकि हमारा प्रोफेशन अलग है, हमारा नेचर अलग है। तो वर्ण व्यवस्था में ये जो इंटरचेंजिंग होने के चांसेस हमेशा रहते थे। एन इंडिविजुअल विथ मेरिट कैन मूव फ्रॉम वन टू अनदर वर्ण। हाउएवर द एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम हैज बीन डिस्टॉर्टेड फ्रॉम द एंशिएंट वर्ण सिस्टम। महाभारत कहता है, ये सब हमारी बातें नहीं है, ये आपके शास्त्र ही बताते हैं। महाभारत के शांति पर्व में आता है, इट इज सेड दैट ब्राह्मण इज नॉट ए ब्राह्मण जस्ट बिकॉज ही इज बॉर्न इन ए ब्राह्मण फैमिली, नॉर इज ए शूद्र ए शूद्र बिकॉज हिज पेरेंट्स आर शूद्र। महाभारत के दूसरा रेफरेंस है दैट ए शूद्र कैन बिकम ब्राह्मण बाय एंगेजिंग इन सेल्फ कंट्रोल ट्रूथ एंड राइटसनेस। मनुस्मृति कहता है दैट बाय बर्थ एवरी ह्यूमन बींग इज ए शूद्र, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात्ज उच्यते वेद पाठात् भवेद् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। पैदा होने के बाद हर व्यक्ति शूद्र भी पैदा होता है। शूद्र मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसमें कोई एबिलिटी नहीं है। संस्कारात् जब उसका संस्कार होता है, उपनयन संस्कार मतलब जो स्कूल में एडमिशन होता है, तो उसका दूसरा जन्म होता है, वो द्विज कहलाता है। दूसरा जन्म क्यों? एक जन्म माँ के गर्भ से पैदा हुआ, पशु में और उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु भी पढ़े लिखे नहीं, बच्चा भी पढ़ा लिखा नहीं होता है, बच्चे को कोई समझ नहीं, पशुओं को कोई समझ नहीं है। जब वो पढ़ाई लिखाई करता है, जब वो एजुकेशन लेता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है, वो दूसरा जन्म उसको ह्यूमन बींग बनाता है, एक्चुअल नॉर्मल ह्यूमन बींग बनाता है। पर जब वो शास्त्रों को पढ़ता है, धर्म और अध्यात्म में गति करता है, तो वो विप्र कहलाता है, और जो खुद को रियलाइज करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। कोई भी हो, पैदाइशी हर कोई शूद्र है, अपने व्यवहार से हम अपने अपने जनजाति को बदलते हैं। ये मनुस्मृति का एक श्लोक देखिए, शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेव तु विद्याद्वैश्यात् तत्त्वमेव च। As the son of Shudra, may attain the rank of Brahmana. He who has to possess his qualification, character and accomplishments. And as the son of a Brahmana, may become a Shudra if he sinks to his level in his character, inclination and manner. Even so, must it be with him who springs from a Kshatriya, even so with him who born of a Vaishya. So, ये डिपेंड करता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, मेरा टेम्परामेंट कैसा है, और मैं किस तरह के प्रोफेशन चूज करता हूँ। इससे डिसाइड होता था कि मैं किस क्लास में, किस वर्ण में आता हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ या शूद्र। और आज का जो सिस्टम है, द एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम इज बेस्ड सोली ऑन बर्थ एंड नॉट क्वालिटीज और एक्शंस ऑफ ए पर्सन। उसका रिजल्ट क्या होता है? हजारों सालों से हमारे यहाँ जो टैलेंट की कमी हुई, देखिए हम इस हाउस अब तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाला देश बनने जा रहे हैं। हिंदुस्तान को आजाद हुए भी 70 साल करीब हो गया है। भारत को ये ओलंपिक का खेल हो, साइंस के नोबेल पुरस्कार हर साल अनाउंस होता है, दुनिया भर के दुनिया चीजें होती हैं। आपके यहाँ पढ़े लिखे लोगों की काम नहीं है, क्यों हम कुछ अच्छा नहीं कर पाते किसी भी फील्ड में? क्योंकि हजारों सालों से हम जाति के नाम पर हम टैलेंटेड लोगों को सप्रेस किया, अनटैलेंटेड लोगों को प्रमोट किया। उसका परिणाम क्या हुआ? हजार हजार शास्त्र आपके पूजा घर में और लाइब्रेरी में रह गए, कोई पढ़ने वाला नहीं मिला, क्योंकि आपने 75% लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। 50% लेडीज है, इनको भी सारे अधिकार छीन लिया। बाकी 25-30% लोग सूत्र बना के उनको पढ़ने का अधिकार छीन लिया जाति व्यवस्था के नाम पर, क्योंकि तुम छोटे जात को, तुम औरत हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं पढ़ने का। जो 20-25% बचे, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई टेम्परामेंट तो है नहीं है, नेचर तो है नहीं है, बस बाय बर्थ वो किसी खास जाति से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनके कोई टैलेंट होने का चांस तो है नहीं है, मजबूरन वो उस जात में फंसे पड़े। तो ये सिस्टम हमारा, वैसे और बहुत सारे कारण है क्यों भारतीय लोग दुनिया में इतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं बन पाते। टैलेंट है ऐसा कुछ नहीं है, पर वो जो टैलेंट है वो ज्यादातर शूद्र वाला टैलेंट ज्यादा है। दूसरों के नीचे नौकरी करके, इवन हायर नौकरी भी हो, हम बड़े खुश रहते हैं। इवन आज भी हायर एजुकेटेड लोग भी नौकरी करके खुश रहते हैं। अपना कुछ इनोवेशन करना, नई चीजें सोचना, नई चीजें बताना। अब किसी भी पढ़े लिखे लोग को उसके इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पूछो, उसके रिलीजन के बारे में पूछो, वो जो कुछ बोलेगा वो वेस्टर्न स्कॉलर के द्वारा बताया गया होगा। ना उसका कुछ लेन देन है, ना उसके किसी इंडियन एंसेस्टर का कुछ उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे नॉलेज। उसका कारण है, बहुत सारे कारण है, ऐसा नहीं कि यही एक कारण है, पर ये भी एक कारण है क्योंकि हमारे यहाँ हजार हजार साल से हमने जो नेचुरल टैलेंट है उसको सप्रेस किया इन द नेम ऑफ कास्ट सिस्टम। और जो आर्टिफिशियल टैलेंट है, जिसमें टैलेंट है नहीं है, वो प्रमोटेड होते रहे इन द नेम ऑफ कास्ट सिस्टम। तो देवियों सज्जनों, अच्छी चीजें भी आपके ही पास है, बुरी चीजें भी आपके ही पास है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप अच्छी चीज को चुनते हो या बुरी चीज को चुनते हो, दोनों आपके पास है, ये हमारे हाथ में होता है। हम किस चीज को प्रमोट करते हैं, वर्ण व्यवस्था को या जाति व्यवस्था को? जाति व्यवस्था को चुनकर हम अपनी सोसाइटी को, हमारे देश को, हमारे फैमिली को और खुद की मोरालिटी को हम कितने नीचे ले सकते हैं, और वर्ण व्यवस्था को चूज करके हम अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को कितने आगे ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगले बार हम चर्चा करेंगे आश्रम क्या है, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ये क्यों बनाए गए थे, आजकल इसका क्या स्वरूप है, और पहले इसको बनाने के पीछे शास्त्रों का क्या रहस्य था, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसी के साथ यहाँ विराम देते हैं। ओम शांति शांति।